66 का रात की क्लास चल रहा था।
ओम शांति। द नाइट क्लास डेटेड 7th December 1966 वाज इन प्रोग्रेस।
पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कौरव पांडव असुर अर्थात देवताओं की युद्ध तो नहीं है।
We were discussing the topic in the beginning of the middle part of the first page. It certainly isn't a war between the Kauravas and the Pandavas, or the demons and the deities.
बाप बेट समझाते हैं कि यवनों का राज्य था थोड़े ही।
The father sits and explains, the Yavanas actually didn't rule.
ये तो पाकिस्तान अभी बना है।
Pakistan came into existence just now.
अनेक राजधानी बन गई है।
Many capitals have come into existence.
वास्तव में महाभारत गृह युद्ध जो हुआ उसमें पांडव कौरव नहीं लड़े।
In reality, the Pandavas and the Kauravas didn't fight the massive civil war of Mahabharat.
यवनों की लड़ाई है।
इट इज द वॉर ऑफ यवन्स।
यवन माना मुसलमान।
यवन्स रिफर टू द मुस्लिम्स।
मुसलमान आतताई होते।
द मुस्लिम्स आर एट्रोशियस।
और नेचुरल कैलेमिटीज से भी विनाश होना है।
एंड डिस्ट्रक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू नेचुरल कैलेमिटीज एज वेल।
क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज होनी चाहिए।
इट इज बिकॉज द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हैज टू चेंज।
क्यों चेंज होनी चाहिए?
व्हाई डज इट हैव टू चेंज?
क्योंकि जब तक दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती।
इट इज बिकॉज अनलेस द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड चेंजेस द न्यू वर्ल्ड कांट कम।
नई दुनिया में सुधरे हुओं का राज्य होना चाहिए।
द रिफॉर्म्ड वंस शुड रूल इन द न्यू वर्ल्ड।
और सुधरे हुए देवताएं कहे जाते हैं देवताएं सिर्फ भारत में राज्य करती हैं।
एंड द रिफॉर्म्ड वंस आर कॉल्ड डेटीज। डेटीज रूल्ड ओनली इन भारत।
दूसरे धर्म आए उनके लिए दूसरे दूसरे धर्म खंड समुद्र से बाहर आए और वहां उन्होंने राजाई की।
When the other religions came, the other religious lands came out from the ocean for them, and they ruled there.
तो एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगी, तो एक खंड भी चाहिए।
So, when there is one religion, one kingdom, one language, one opinion, there should be one land as well.
वो है भारत खंड।
दैट वन लैंड इज द लैंड ऑफ भारत।
इस भारत खंड में भगवान आते हैं और आकर के देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं।
इट इज द लैंड ऑफ भारत वेयर गॉड कम्स एंड एस्टैब्लिशेस द किंगडम ऑफ द डेटीज।
तो दुनिया की ज्योग्राफी चेंज हो माना दुनिया का विनाश हो।
So, the geography of the world should change means the destruction of the world should take place.
जब दुनिया का विनाश होगा तो ये अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अरब देश ये जितने भी दूसरे दूसरे धर्म खंड हैं वो सब geography में से निकल जाएंगे।
When the world is destroyed, all the other religious lands like America, Africa, Australia and the Arab countries will be wiped off geography.
दुनिया में सिर्फ भारत खंड ही रहेगा.
ओनली द लैंड ऑफ भारत विल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड.
तो ऐसे ऐसे ये बातें समझानी पड़े.
सो यू शुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स इन दिस वे.
पहले दुनिया में एक ही धर्मखंड था.
ओनली वन रिलीजियस लैंड एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड अर्लियर.
आज से 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था.
देयर वॉज नो नेम और ट्रेस ऑफ अमेरिका इन द ह्यूमन इंटेलेक्ट 500 ईयर्स अगो.
नक्शे में ही नहीं था अमेरिका.
अमेरिका डिडंट एग्जिस्ट ऑन द मैप एट ऑल.
ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य की बुद्धि पटल पर नहीं
था. ऑस्ट्रेलिया डिडंट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन इंटेलेक्ट 300 ईयर्स अगो.
दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं.
ऑस्ट्रेलिया डिडंट एग्जिस्ट ऑन द मैप एट ऑल.
ऐसे ही और जो धर्मखंड हैं, उनके जब धर्म पिताएं परम धाम से सृष्टि पर उतरे हैं अपना अपना धर्मखंड स्थापन करने के लिए और धर्म स्थापन करने के लिए, तब वो धर्मखंड समुद्र से ऊपर आए.
In the same way, the other religious lands came out from the ocean when their religious fathers descended on this world from the supreme abode to establish their respective religious land and religion.
दुनिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, धर्मों की संख्या बढ़ती है तो राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है.
It is because as the population increases in the world, the number of religions and states go on increasing.
तो मनुष्यों के रहने के लिए ज्यादा जमीन भी चाहिए.
Consequently, people need more land to live on.
तो पृथ्वी का विस्तार होता जाता है.
So the earth keeps expanding.
पृथ्वी नाम ही तब पड़ता है जब प्रफुल्लाती अर्थात विस्तार को पाती है.
The very name पृथ्वी is given as it expands.
तो ये पृथ्वी जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे विस्तार को पाती गई.
So the earth expanded as the number of religions increased.
अभी तो बाप आया हुआ है.
Well, the father has come now.
एक ही धर्म की स्थापना करने के लिए आया हुआ है. जो धर्म पहले एक ही धर्म था.
He has come to establish just one religion, the one religion which only existed earlier.
ये दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म और दूसरे दूसरे राज्य और दूसरे दूसरे धर्मखंड तो बाद में आए.
The other religions, other kingdoms, other religious lands have come into existence later in the world.
जो पहले नहीं थे वो अब फिर नहीं रहे.
Those who didn't exist earlier won't exist now either.
कैसे नहीं रहेंगे?
How won't they exist?
जो जो आसुरी धर्म आए मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए वो सब खलास होंगे.
All the demonic religions which are established by human beings, they will all be destroyed.
ये दुनिया ही खलास हो जाएगी.
This very world will be destroyed.
सिर्फ भारत खंड बचेगा.
Only the land of Bharat will exist.
और भारत खंड में भी वो आत्माएं बचेंगी जिन्होंने पवित्रता के आधार पर अपनी आत्मा को पवित्र बनाया अथवा योग बल से पवित्र बनाया.
And in the land of Bharat as well, only those souls who purified their souls on the basis of purity or yog bal will survive.
Pavitra rahenge. और विचार फैलाने वाले अपवित्र खलास हो जाएंगे।
The pure ones will survive and the impure ones who spread adultery will be destroyed.
ऐसे ऐसे एक एक चित्र पर समझाना चाहिए।
You should explain on each picture in this way.
फिर दूसरा चित्र उठाना चाहिए।
Then you should proceed to the next picture.
दिखाना चाहिए, देखो ये योग में बैठे हैं।
You should show saying, look, these ones are sitting in yoga.
याद में बैठने से क्या होगा?
What will happen when we sit in remembrance?
एक की याद में बैठेंगे तो एक वाइब्रेशन बनेगा, एक मत बनेगा।
If we sit in the remembrance of the one father, the same kind of vibrations will be created. And there will be one opinion.
एक मत बनेगी तो सबके अंदर से एक ही भाषा निकलेगी।
When there will be one opinion, everyone will speak the same language from within.
दो दो बातें नहीं निकलेंगी।
They won't speak two different things.
द्वैत मत होगा ही नहीं।
There won't be dualistic opinion at all.
जब द्वैत मत नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं।
When there isn't dualistic opinion, there won't be the question of fights or quarrels at all.
तो ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है।
So, the father has come to establish such a new world.
अभी हमारी बुद्धि एक बाप के साथ है।
Our intellect is engaged with the one father now.
धर्म पिता इस दुनिया में बहुत है।
There are many religious fathers in this world.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कितने धर्म पिताएं आए और बड़ी से बड़ी जनरेशन के बाप बनकर के बैठी।
So many religious fathers like Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak came and they became the fathers of very big generation.
लेकिन उन्होंने अपने को गॉड फादर तो नहीं माने।
But they didn't consider themselves to be God the Father.
भगवान तो नहीं माने।
They didn't consider themselves to be God.
भगवान गॉड फादर तो दुनिया में एक ही है।
There is just one God the Father in the world.
कहा भी जाता है God is one. और God is the truth.
It is also said God is one and God is truth.
सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है।
It is said सत्यम शिवम सुंदरम.
तो शिव भगवान वही एक सत्य है।
So, God Shiv alone is the truth.
और बाकी सब मनुष्य मात्र झूठ।
And the rest of the human beings are false.
मनुष्य झूठे हैं, तो मनुष्य गुरु भी झूठे।
Human beings are false, so the human gurus are false as well.
सत्य एक परमात्मा है।
The one supreme soul alone is true.
एक लोग भी नारा लगाते हैं। एक सदगुरु निरंकार अकाल मूर्त।
The Sikhs also raised the slogan, the one incorporeal Sadguru is the imperishable personality.
मन सदगुरु एक है।
It means there is one Sadguru.
और गुरु अनेक।
While there are many gurus.
तो सतगुरु मन सच्चा गुरु जब एक है तो बाकी गुरु क्या हो गए?
So, when there is only one Sadguru, that is the true Guru, what are the rest of the Gurus?
झूठे हो गए?
They are false.
झूठे गुरुओं ने, झूठे झूठे धर्म पिताओं ने आकर के इस दुनिया को झूठ कंड बनाई दिया।
the false gurus and the false religious fathers came and made this world the land of falsehood.
झूठ दुनिया में फैलेगा तो अशांति बढ़ेगी या घटेगी?
When falsehood spreads in the world, will restlessness increase or decrease?
अशांति बढ़ेगी.
Restlessness will increase.
तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में देखते आए जब से दूसरे दूसरे धर्म पिता इस धरती पर आए मनुष्य गुरुओं के रूप में तब से इस धरती में दुख अशांति बढ़ती जा रही
है. सो वी हैव बीन विटनेसिंग द हिस्ट्री ऑफ 2500 इयर्स. सोरो एंड रेस्टलेसनेस हैव कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन दिस वर्ल्ड एवर सिंस द अदर रिलीजियस फादर्स केम टू दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन गुरुज.
दुनिया की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है.
द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग.
दुनिया में वैश्यावृत्ति माने व्यभिचार भी बढ़ता जा रहा है.
प्रोस्टिट्यूशन दैट इज अडल्ट्री इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड.
अब बाप आए हैं.
नाउ द फादर हैज कम.
कि मैं इस दुनिया को शिवालय बना करके जाऊंगा.
ही सेज I will make this world into the house of Shiv, Shivalay, and go.
अब ये वैश्याल फलाश होगा.
This brothel, that is वैश्यालय, is to end now.
न वैश्याएं रहेंगी न वैश्याओं की दुनिया रहेगी.
Neither prostitutes, nor will the world of prostitutes exist.
इन वैश्याओं ने भारत का नाम बहुत बदनाम किया है.
दीज प्रोस्टिट्यूट्स हैव डिफेम्ड द नेम ऑफ भारत अ लॉट.
नहीं तो भारत बहुत ऊंचा था.
अदरवाइज भारत वॉज वेरी एलिवेटेड.
अभी फिर मैं आया हुआ हूँ.
नाउ आई हैव कम अगेन.
ऐसा संपूर्ण भारत को शिवालय बना करके जाऊंगा.
I will make this entire Bharat into Shivalay and go.
Shivalay में क्या होता है?
What happens in Shivalay?
एक शिव की उपासना सब देवताएं बैठ करके करते हैं.
All the deities sit and worship one Shiv.
जितने भी पुराने पुराने शिव के मंदिर हैं, उनमें जाके देखें, शिवलिंग बीच में रखा हुआ है. और आजू बाजू चारों तरफ दूसरे देवताएं भी बैठे हुए.
गो एंड सीन ऑल द ओल्ड शिव टेम्पल्स. शिवलिंग इज केप्ट इन द सेंटर एंड द अदर डेटीज आर शोन अराउंड हिम इन ऑल द फोर साइड्स.
सब उसे एक की उपासना कर रहे हैं.
एवरीवन इज वर्शिपिंग द वन शिवलिंग.
तो एक की मान्यता हुई ना.
सो द वन अलोन इज रिवियर्ड. Isn't he?
तो ऐसा भारत हो जाएगा कि संपूर्ण भारत में एक नारायण का राज्य होगा.
So, भारत will become such that one नारायण will rule the entire भारत.
वो नारायण ही जो नर से नारायण बनता है उसमें बाप शिव प्रवेश करते हैं और उसे बाप समान बनाते हैं.
द फादर शिव एंटर्स दैट वेरी नारायण हु बिकम्स नारायण फ्रॉम अ मैन एंड मेक्स हिम इक्वल टू हिमसेल्फ.
इसलिए भारत की परंपरा में एक ही देवता ऐसा गाया हुआ है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है.
दिस इज वाई Only one deity is glorified in the tradition of Bharat, whose name is added to Shiv.
नाम भी रख देते हैं. शिव नारायण, शंकर नारायण, शिव शंकर.
People are also given the name Shiv Narayan, Shankar Narayan, Shiv Shankar.
तो वो शिव जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जो बिंदु कभी जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस पहले व्यक्ति में प्रवेश करता है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात पिता होता है।
सो शिव द नेम ऑफ हुज वेरी पॉइंट इज शिव द पॉइंट हु नेवर कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ व्हेन ही कम्स इन दिस वर्ल्ड द फर्स्ट पर्सन ही एंटर्स इज द सीड दैट इज द फादर ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड।
सारी मनुष्य सृष्टि का पिता
ही इज द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड।
मन 500-700 करोड़ की जो भी प्रजा है सब का पिता प्रजा पिता।
इट मीन्स ही इज प्रजा पिता द फादर ऑफ ऑल द 5-7 billion सब्जेक्ट।
उस प्रजापिता में प्रवेश करके वो उसको बड़े से बड़ा देवता बनाता है।
शिव एंटर्स दैट प्रजापिता एंड मेक्स हिम द ग्रेटेस्ट डेटी।
क्योंकि देवताओं के द्वारा ही सृष्टि में सुख शांति स्थापन हो सकती है।
इट इज बिकॉज हैप्पीनेस एंड पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड ओनली थ्रू द डेटीज।
और जो बड़े से बड़ा देवता बनता है वो ही फिर शिव के सहयोग से सारी सृष्टि को देवता बनाता है। देवता ही सृष्टि बनाता है।
एंड द वन हु बिकम्स द ग्रेटेस्ट डेटी ही हिमसेल्फ मेक्स द एंटायर वर्ल्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेटीज विद द हेल्प ऑफ शिव।
जैसे वकील वकील बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है।
Just like an advocate makes his students into an advocate, an engineer makes his students into an engineer, a doctor makes his students into a doctor.
शिव भी ऐसे तन में आकर के उसे पहले बड़े से बड़ा देवता बनाता है जिसे कहते हैं महादेव।
शिव enters the body and makes him into the greatest deity who is called Mahadev.
शिव और शंकर को मिला करके एक कर दिया भक्ति मार्ग।
शिव एंड शंकर हैव बीन कंबाइंड एज वन इन द पाथ ऑफ भक्ति।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाते भी हैं प्रदर्शनी में कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर अलग अलग हैं।
ब्रह्म कुमार कुमारी इवन एक्सप्लेन इन द एग्जीबिशन दैट शिव एंड शंकर आरंट वन दे आर डिफरेंट।
लेकिन ये समझाने से समझ में नहीं आता है किसी को।
बट नोबडी अंडरस्टैंड्स इट ऑन बीइंग एक्सप्लेन्ड।
कारण बताना चाहिए।
यू शुड टेल देम द रीजन
कि शिव शंकर एक क्यों नहीं है। शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया है।
As to why Shiva and Shankar aren't one, why Shiva and Shankar have been combined as one?
कारण चाहिए।
They need the reason.
दो आत्माएं हैं।
Tell them they are two different souls.
शरीर एक है।
But the body is the same.
एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं।
Two souls work in the same body.
उन दोनों आत्माओं में जो सुप्रीमेसी वाला है बड़ा है उसका नाम पहले दिया जाता है और जो उसका बच्चा है उसका नाम बाद में दिया जाता है।
Between those two souls, the one who is supreme and senior, his name is given first, and his child's name follows his.
शिव है बाप।
शिव इज द फादर ऑफ ऑल द सोल्स।
जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनका बाप है नारायण कहो या शंकर कहो या आदिदेव कहो।
कॉल हिम नारायण शंकर और आदि देव ही इज द फादर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स।
शास्त्रों में आया हुआ है तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है।
इट हैज बीन मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः।
तुम इस सृष्टि के आदि देव हो, आदि पुरुष हो, पुराने से पुराने पुरुष हो।
इट मीन्स यू आर द फर्स्ट डेटी, द फर्स्ट मैन, द एंशियंट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड।
तुमसे जास्ती पुराना पुरुष कोई नहीं है।
नो मैन इज मोर एंशियंट देन यू।
पुरुष माना?
व्हाट डज पुरुष मीन?
जो शरीर रूपी पुरी में आराम से रहता है।
द वन हु रेस्ट्स कंफर्टेबली इन द सिटी लाइक बॉडी।
कोई अशांति नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं।
हु इजंट रेस्टलेस एट ऑल, हु डजंट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ सोरो।
ऐसी स्टेज सबसे पहले बनाता है, वो है आदि पुरुष।
द वन हु अटेन्स सच स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल इज आदि पुरुष, द फर्स्ट मैन।
ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा में रहता है कि जैसे उसका शरीर रूपी घर ज्ञान जल से भरपूर, जैसे सागर ज्ञान जल से भरपूर होता है।
He stays in such zenith of knowledge that it is as if his house like body is full of the water of knowledge, like the ocean is full of the water of knowledge.
इसलिए उसका नाम दिया है नारायण।
This is why he is named Narayan.
नार माना जल और अयन माना घर।
नार मीन्स वॉटर एंड अयन मीन्स हाउस।
उसका जो शरीर रूपी घर है वो ज्ञान जल से भरा पूरा है, जैसे सागर ज्ञान जल से भरा पूरा होता है।
His house like body is full of the water of knowledge, like the ocean is full of the water of knowledge.
वो तो जड़ सागर है जो जड़ जल से भरा पूरा होता है।
That is the inert ocean which is full of the inert water.
ये ज्ञान सागर।
This one is the ocean of knowledge.
ज्ञान सागर कहो, ज्ञान मान सरोवर कहो, ज्ञान का घर कहो।
You may call him the ocean of knowledge, the mansarovar of knowledge, or the house of knowledge.
जैसे कि ये सारी दुनिया भी एक घर है, कुटुंब है।
Just as this entire world is also a house, a family.
बाप आकर के हमको लक्ष्य देते हैं कि सारी दुनिया को तुम्हें एक कुटुंब बनाना है।
The father comes and gives us this aim that we have to make the entire world one family.
कब बनेगा?
When will it become that?
जब सबकी बुद्धि में ये मान्यता पक्की हो जाए कि हमारा एक ही बाप है।
When this belief sits firmly in everyone's intellect, we all have just one father.
हम सब बिंदु बिंदु आत्माएं हैं।
We are all point souls.
हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है।
द फादर ऑफ अस पॉइंट सोल्स इज द पॉइंट ऑफ लाइट एज वेल।
जैसे हाथी का बाप हाथी ही होता है, चींटी का बाप चींटी ही होता है, जैसा बच्चे का रूप होगा वैसा बाप का रूप होगा।
Just like the father of an elephant is an elephant, the father of an ant is also just an ant. As is the form of the child, so will the form of the father be.
तो हम सब ओरिजिनल में वास्तव में हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं।
So we are all point of light souls originally in reality.
जिन बिंदु बिंदु आत्माओं की यादगार में हम भक्ति मार्ग में 63 जन्म रकुटी के मध्य में टीका लगाते रहे, ये दिखाने के लिए कि हम ज्योति बिंदु आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में टिकी हुई है।
We have continued to apply tika in the middle of Bhrikuti as the yadgar of the point source for 63 births in the path of bhakti to show that we, the point of light souls, reside in the middle of this Bhrikuti.
भाइयों में भावना कम होती है तो टीका लगाना छोड़
दिया। Brothers are less sentimental, so they stopped applying a tika.
माता है भावनावान होती है तो आज भी भारत में जो भी माताएं हैं सब बिंदु लगाती।
मदर्स आर सेंटिमेंटल सो ऑल द मदर्स इन भारत अप्लाई अ बिंदु दैट इज बिंदी इवन टुडे।
अभी वैसे बिंदु लगाने की बात नहीं है।
नाउ इट इजंट अबाउट अप्लाइंग अ बिंदु एज सच।
अपन को और दूसरों को क्या समझना है?
What should you consider yourself and others as?
ज्योति बिंदु आत्मा।
A point of light soul.
ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा समझने वाले अपने को ज्योति बिंदु आत्मा पक्का करने वाले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने वाले देहभानु को त्यागने वाले देह और देह के संबंधों को त्यागने वाले बुद्धि से ही त्यागने ऐसी स्थिति बना लें, ऐसे नई दुनिया में बाप के बच्चे बनते हैं।
सच वंस हु कंसिडर देमसेल्व्स एंड अदर्स अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल हु मेक इट फर्म दैट दे आर अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल who become constant in the soul conscious stage, who give up body consciousness, who give up the body and the bodily relationships, who make their state such that they give it up through the very intellect, they become the father's children in the new world.
Sab Narayan saman honge.
Everyone will be equal to Narayan.
Yatha Raja, tatha Praja, sab aatmik sthiti wale honge.
As the king, so the subjects, everyone will have a soul conscious stage.
Unko kahenge devata.
They will be called deities.
Kahan ke rehne wale?
The residents of which place?
Narak ke rehne wale ya swarg ke rehne wale?
The residents of hell or heaven?
Swarg ke rehne wale.
The residents of heaven.
Swarg kahan hi tab jata hai? जब स्वा माने आत्मा और गा माने गया।
इट इज सेड स्वर्ग दैट इज हेवन ओनली व्हेन स्व मींस द सोल एंड ग मींस वेंट।
कहाँ गया?
वेयर डिड इट गो?
आत्म की स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया।
इट वेंट इन द सोल कॉन्शियस स्टेज मींस इट वेंट टू हेवन।
तो नई दुनिया में सिर्फ भारत होगा और भारत में सब देवात्मा होंगे।
सो ओनली भारत विल एग्जिस्ट इन द न्यू वर्ल्ड एंड ऑल द डेटी सोल्स विल एग्जिस्ट इन भारत।
सब देवात्माओं का मुखिया एक होगा।
देयर विल बी वन चीफ ऑफ ऑल द डेटी सोल्स
जिसको कहेंगे नारायण। ज्ञान जल में जिसका घर है।
Who will be called Narayan, the one whose home is in the water of knowledge.
ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा में रहता है कि दुख शोक और रोग अशांति उसको तंग नहीं कर सकती।
He stays in such zenith of knowledge that sorrow, grief, disease and restlessness can't trouble him.
को कहते हैं आत्मनिष्ठ।
ही इज कॉल्ड आत्मनिष्ठ।
जिसका गीता में भी, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी वर्णन है कि आत्मनिष्ठ उसे कहा जाता है जो न खुद दूसरों से तंग हो, अशांति को पाए, दुख को पाए और न दूसरों को तंग करे।
There is a mention of it in the Gita. The Gita written by the human beings as well, that the one who isn't troubled, who doesn't feel restless or sorrowful because of others and doesn't give sorrow to others either, is called Atmanishth.
Na dukh lena hai aur na dukh dena hai. Aisi stage bani hui hogi.
He would have attained such stage that he neither takes nor gives sorrow.
और उस नई दुनिया में सबकी ऐसी स्थिति होगी।
And everyone will have such a stage in that new world.
उसको कहेंगे देवताओं का राज्य या नारायण का राज्य।
That will be called the kingdom of deities or the kingdom of Narayan.
नारायण एकमात्र देवता ऐसा है, संपूर्ण देवता गाया हुआ है, जिसका शास्त्रों में ऐसा गायन है कि ग्लानी का नाम निशान नहीं।
नारायण इज द वन एंड ओनली डेटी who is glorified as a complete deity, who is glorified in the scriptures in such a way that there is no name or trace of his defamation.
Aur sab devtaon ki glani ki hui.
All the rest of the deities have been defamed.
Narayan ki koi glani nahi.
There is no defamation of Narayan.
Kyun?
Why?
और देवताओं की ग्लानी क्यों हुई, नारायण की क्यों नहीं?
Why have the other deities been defamed and not Narayan?
अरे 100% एक ही होगा या सब होंगे?
अरे will only one soul or will everyone be 100% complete?
एक ही होता है, हीरो पार्टधारी एक ही होता है।
ओनली वन बिकम्स दैट, देयर इज ओनली वन हीरो एक्टर।
सारे शक्ति रूपी रंगमंच में जो आत्मा 100% आत्मिक स्टेज को पहले पहले धारण करती है और ज्ञान को 100% उठाती है।
सो On the stage-like world, the soul who takes on 100% soul conscious stage first of all and grasps 100% knowledge.
Gyan mana jankari. Satyai.
Knowledge means information, truth.
Aisi satyai ko dharna karne wali atma, baap shiv ke saman banti hai.
Such soul who assimilates the truth becomes equal to the father Shiv.
इसलिए शिव शंकर को ईश्वर कहा जाता है।
This is why Shiv Shankar is called ईश्वर, that is God.
ईश्वर माना?
What does ईश्वर mean?
ईश और वर।
ईश and वर।
ईश माना शासन करने वाला और वर माना श्रेष्ठ।
ईश मीन्स द वन हु रूल्स एंड वर मीन्स एलिवेटेड।
सारी दुनिया में जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन किया,
द वन हु रूल्स द एंटायर वर्ल्ड इन द बेस्ट वे।
डंडे के बल पर शासन नहीं किया, हिंसा के बल पर शासन नहीं किया.
He didn't rule with the power of a stick. That is, he didn't rule with the power of violence.
फिर कैसे किया?
Then, how did he rule?
ज्ञान और योग के बल पर, धारणा के बल पर और निस्वार्थ सेवा के बल पर.
With the power of knowledge, yog, assimilation and nishkam service, that is, service done without expecting anything in return.
तन से, मन से, समय से और जो भी संपर्क में आए उनके द्वारा और जो भी संबंधी मात्र हो उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा की.
He did selfless service through the body, mind, time, through all those who came in connection and through all the relatives.
ऐसी निस्वार्थ सेवा करने वालों का हुजूम तैयार होता है. जो हुजूम सूर्यवंशी कहलाता
है. A group of such ones who do such selfless service is formed. The group that is called Suryavanshi.
ज्ञान सूर्य तो एक ही है.
There is only one son of knowledge.
सूर्य और उससे जो बने हुई रचना है उसका नाम पड़ा सूर्यवंशी.
The sun and the creation created by him are named Suryavanshi.
जैसे चंद्र से बने हुए चंद्रवंशी.
Just like the creations of the moon are Chandravanshi.
शास्त्रों में दिखाया है राजा रघु से बने हुए रघुवंशी.
It is written in the scriptures, the creations of King Raghu are Raghuvanshi.
गीता में लिखा है कि भगवान आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते.
It is written in the Gita, when God comes, he gives the knowledge to the sun first of all.
और सूर्य से फिर सूर्यवंशी बनते हैं.
एंड देन सूर्यवंशीज आर क्रिएटेड बाय द सन.
आज भी भारत की परंपरा में नौ ग्रहों की पूजा होती है. अष्टदेवों की पूजा होती है.
इवन टुडे इन द ट्रेडिशन ऑफ भारत द नाइन प्लैनेट्स आर वर्शिप्ड, द एट डेटीज आर वर्शिप्ड.
पूजा का आधार क्या होता है?
What is the basis of worship?
जरूर उन आत्माओं ने विशेष प्योरिटी को धारण किया है जो हर अनुष्ठान के पहले उनकी पूजा की जाती है, चाहे शादी हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे कोई भी कर्म संस्कार हो.
Certainly. Those souls assimilated special purity that they are worshipped before every ritual, whether it is a marriage ceremony, yajnopavit ceremony or any ritual. Yajnopavit ceremony. A Hindu ceremony when a young Brahmin boy wears the sacred thread for the first time. All these are the yadgar of which time?
संगम युग में जिन्होंने पवित्र बनने का पुरुषार्थ किया और दूसरी आत्माओं को भी पवित्र बनने में सहयोग दिया, उन विशेष आत्माओं की नवग्रह के रूप में पूजा होती
है. Those who made the purusharth to become pure in the confluent stage and also helped other souls in becoming pure, those special souls are worshipped in the form of the nine planets.
उनमें आठ हैं आजू बाजू में और बीच में है मुखिया।
अमंग देम एट आर प्लेस्ड ऑन द साइड्स एंड द चीफ इन द सेंटर।
जैसे नवरत्न की अंगूठी बनाते हैं तो आजू बाजू में कम वैल्यू के रत्न लगाते हैं और बीच में हीरे को लगाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वेन दे मेक अ रिंग ऑफ द नाइन जेम्स दे प्लेस द लेस वैल्यूएबल जेम्स ऑन द साइड एंड द डायमंड इन द सेंटर।
हीरा माना ही हीरो पार्टदारी।
डायमंड दैट इज हीरा इटसेल्फ रिफर्स टू द हीरो एक्टर।
तो सबका उद्योग किससे लगता है?
सो द कनेक्शन ऑफ एवरी वन इंटेलेक्ट इज एंगेज विद होम
हीरे के साथ लगता है
विद द डायमंड।
ऐसे उस जड़ा हीरे में विशेषता होती है।
जस्ट लाइक दैट नॉन लिविंग डायमंड हैज अ स्पेशलिटी।
क्या खासियत होती है?
वॉट इज इट स्पेशलिटी?
वैल्यूएबल तो होता ही है लेकिन उसका कारण यह है कि निचाट अंधेरे में भी रख दिया जाए तो भी चमक मारता रहता है।
स्टूडेंट इट इज वैल्यूएबल इट इज इंडीड वैल्यूएबल बट द रीजन इज दैट इट कंटिन्यूज टू ग्लिटर इवन इफ इट इज केप्ट इन पिच डार्कनेस।
इस समय की यादगारें हैं।
इट इज द यादगार ऑफ दिस टाइम।
जब सारी दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है सारी दुनिया की तो बात छोड़ो भगवान जो दुनिया रचने के लिए आता है और ब्रह्मा के द्वारा जब दुनिया रचता है तो उस ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अज्ञान अंधेरा फैल जाता है।
When pitch darkness of ignorance spreads in the entire world, leave alone the world which God comes and creates, when He creates it through Brahma, pitch darkness of ignorance spreads in that world of Brahmins as well.
सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते
हैं। Everyone drowns in the darkness of ignorance.
अज्ञान ही अंधकार ही अंधकार।
There is darkness and only the darkness of ignorance.
कोई में भी असलियत का ज्ञान नहीं रहता।
Nobody has the knowledge of the reality at all.
तब वो हीरा प्रत्यक्ष होता है।
It is then that the diamond is revealed.
वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है।
The one who is the father of the entire human world is revealed as the father.
सब मनुष्य मात्र का बाप उसको प्रत्यक्ष करने वाला कौन?
Who is the one who reveals the father of all the human beings?
कौन प्रत्यक्ष करता है?
Who reveals him?
मनुष्य शक्ति के बाप को प्रत्यक्ष करता है शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल जो इस सृष्टि पर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता।
शिव द पॉइंट ऑफ लाइट द सुप्रीम सोल हु नेवर कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड रिवील्स द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड।
और कब प्रत्यक्ष करता है?
एंड व्हेन डज ही रिवील हिम?
जब ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है।
When the year of revelation is celebrated in the world of Brahmins,
पहली बार प्रत्यक्ष करता है।
He reveals him for the first time then.
जैसे सूर्य है अंधकार की ओर चला जाता है अंधकार में डूब जाता है कहने में आता है।
फॉर एग्जाम्पल द सन गोज टूवर्ड्स डार्कनेस इट ड्राउन्स इन डार्कनेस इट इज सेड सो।
क्या सूर्य कभी अंधकार में डूबता है?
वेल Does the sun ever drown in darkness?
सूर्य नहीं डूब जाता है.
The sun doesn't drown in darkness.
सूर्य तो दूसरी ओर चला जाता है पृथ्वी के.
The sun goes towards the other side of the earth.
पृथ्वी के इस पार रहने वाली आत्माओं के ऊपर उसकी परछाया पड़ती है पृथ्वी की.
The shadow falls on the souls living on this side of the earth.
तो जिनके ऊपर परछाया पड़ती है वो अंधेरे में आ जाते हैं.
The ones on whom the shadow falls come in darkness.
तो ऐसे ही संचक्र में जो भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं सारी यज्ञ की सरपरस्त होती हैं, वो सूर्य और ब्राह्मण बच्चों के बीच में आ जाती है.
सो इन द सेम वे All the maidens and mothers like Earth, who are the controllers of the entire Yajna, come between the sun and the Brahmin children in 1976.
जैसे स्थूल सूर्य होता है, जब रात्रि के 12 बजते हैं, तो सूर्य एकदम पृथ्वी के उस पार चला जाता है.
For example, the physical sun goes absolutely towards the other side of the earth at 12 o'clock midnight.
बीच में पृथ्वी होती है और पृथ्वीवासी होते हैं.
The earth and the residents of earth are in between.
तो पृथ्वीवासी इस पार वाले अंधकार का अनुभव करते.
So the residents of earth at this end experience darkness.
घोर अंधकार रात्रि के 12 बजे का.
They experience the pitch darkness of 12 o'clock midnight.
ऐसे ही सन 76 में नजारा हुआ.
It was the same scenario in 1976.
सारा का सारा ब्राह्मण परिवार जो ब्राह्मणों की दुनिया में सरपरस्त कन्याएं माताएं थी धरणी के रूप में, उनके दूसरी ओर चैतन्य ज्ञान सूर्य छुप जाता है.
The living sun of knowledge is concealed on the other side behind the entire Brahmin family and the maidens and mothers in the form of earth who controlled the yajna in the world of Brahmins.
और लोग अंधकार में आ जाते हैं.
And people come in darkness.
ब्राह्मणों की सारी ही दुनिया अंधकार में होती है.
The entire world of Brahmins is in darkness then.
लेकिन जो ट्रुथ गॉड फादर सत्यम शिवम है, वो तो ब्रह्मा के मुख से पहले ही वेदवाणी में उच्चारण कर देता है, पहले ही इशारा दे देता है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत सन 76 से होगी.
बट द ट्रू गॉड द फादर सत्यम शिवम नरेट थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा बिफोर हैंड ही हिंट्स बिफोर हैंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ओल्ड वर्ल्ड एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड विल बिगिन फ्रॉम 1976.
सन 66 से ही 10 वर्ष की घोषणा मुरलियों में की जाती रही.
The declaration of 10 years continued to be made in Murlis since 1966 itself.
जो घोषणा हुई उस घोषणा को स्थूल रूप में लोगों ने समझ लिया.
People took the declaration in a limited way.
बीबी दादियों ने भी ऐसा ही समझ लिया. जो यज्ञ की सरपरस्त धरणी मानी जाती है.
द दीदीज एंड दादीज हु आर कंसिडर्ड टू बी द कंट्रोलर्स ऑफ यज्ञ इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ऑल्सो कंसिडर्ड इट इन द सेम वे.
ये अज्ञान बुद्धि में घुस गया.
दिस इग्नोरेंस एंटर्ड द इंटेलेक्ट.
क्या
बॉस
कि 76 में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा।
द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड विल टेक प्लेस इन 1976।
अब इतनी बड़ी दुनिया जब तक सबको बाप के आने का संदेश न मिले तो विनाश कैसे हो जाएगी।
नाउ हाउ विल सच अ बिग वर्ल्ड बी डिस्ट्रॉयड अंटिल एवरीवन रिसीव्स द मैसेज ऑफ द फादर्स अराइवल।
तभी तो विनाश होना चाहिए जब 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को अपने बाप का परिचय मिले।
द डिस्ट्रक्शन शुड टेक प्लेस Only when the 5 to 7 billion people receive the introduction of their father.
नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा?
Or else, how will they be uplifted?
तो ये बुद्धि में अंधकार बैठ गया, अंधश्रद्धा बैठ गई कि बाबा ने मुरली में बोला है 10 वर्ष के बाद दुनिया खलास हो जाएगी, तो उन्होंने समझ लिया खलास हो जाएगी।
So, this darkness, This blind faith sat in the intellect because they thought, Baba has said in the Murli, the world will be destroyed after 10 years. So, it will be destroyed.
अब दुनिया खलास होने की बात ही नहीं है।
Well, it isn't about the world being destroyed at all.
76 में सारी दुनिया में तो पहले से ही अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था।
The darkness of ignorance was already spread in the entire world in 1976.
36 में भी फैला हुआ था।
It was spread in 1936 as well.
वो तो बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दे, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में 36-37 से वो ज्ञान सूर्य बाप जो आया हुआ था वो भी गुप्त हो चुका।
Leave aside the topic of the outside world, but the son of knowledge, the father who had come since 1936-37, also got concealed in the world of Brahmins.
और गुप्त होने के बाद यहाँ तक अंधकार छा गया कि उस सत्य बाप को कोई पहचानने वाला नहीं रहा।
And after he got concealed, darkness spread to such an extent that there was nobody who recognized the true father.
उस सत्य बाप की एक भी सच्चाई की बात को कोई भी मानने वाला नहीं रहा।
There was nobody who accepted even a single true concept of the true father.
अंधेरा है ना?
It is darkness, isn't it?
अंधेरे में पहचान होती नहीं है।
No one can recognize something in darkness.
अंधेरे में कोई का चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है?
How does a person's face look like in darkness?
है? काला दिखाई पड़ता है ना?
It looks black, doesn't it?
तो ज्ञान सूर्य बाप कोई मुकर्रर रथ के द्वारा 76 में प्रत्यक्ष होता है और कोई उसे बाप के रूप में नहीं पहचान पाते।
So, the son of knowledge, the father, is revealed through the permanent chariot in 1976. But nobody is able to recognize him as the father.
भले मुरली में बोल दिया है कि बाप जब आते हैं बाप के रूप में तो 5-year प्लान लेकर के आते।
Though it has been said in the Murli, When the father comes in the form of the father, he comes up with a 5-year plan.
वो भारत की गवर्नमेंट तो बार बार 5-year प्लान बनाती रहती है भारत का उद्धार करने के लिए, भारत को दुनिया में चमकाने के लिए।
The government of Bharat continues to make 5-year plans time and again to uplift Bharat. To make Bharat shine in the world.
लेकिन वो 5-year प्लान कभी पूरा होता ही नहीं।
But those 5-year plans are never successful.
और ये बेहद का बाप एक ही बार ये 5 ईयर प्लान बनाते हैं।
एंड दिस अनलिमिटेड फादर मेक्स अ 5 ईयर प्लान जस्ट वंस।
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष के बाद से लेकर के 5 वर्ष
5 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ रेवलेशन ऑफ द फादर।
प्रत्यक्षता वर्ष 76 और संपूर्णता वर्ष 77।
1976 इज द ईयर ऑफ रेवलेशन एंड 1977 इज द ईयर ऑफ कम्प्लीशन।
किसकी संपूर्णता?
Whose completion?
जो भी दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है ब्रह्मा के बाद, वो दूसरी मूर्ति की संपन्नता हो जाती है, संपूर्णता।
The second personality who is revealed after Brahma attains completion.
जिसे कहते हैं सारी मनुष्य सृष्टि का पिता।
He is called the father of the entire human world.
ज्ञान भी संपन्न रूप में बैठता है और याद भी संपन्न रूप में बैठ जाती है।
Knowledge as well as remembrance sits in his intellect completely.
तो संपन्न हुई आत्मा 77 के बाद जो प्लानिंग शुरू करती है, तो 5 वर्ष का प्लान कब पूरा होता है?
So, the planning which the soul who attains completion starts after 1977, when is the plan of 5 years completed?
78, 79, 80, 81, 82. ये 5 वर्ष में प्लानिंग पूरी होती है। और जो बाप सुबह का साहूकार और शाम का फकीर के रूप में गाया हुआ है।
1978, 1979, 1980, 1981, 1982. The planning is completed in those 5 years and the father is glorified as a wealthy person in the morning and a fakir in the evening.
Savira mana Satyug.
Morning refers to the golden age.
Satyug mein bade se bada sahukar Narayan banta hai. Aur Kaliyug ke ant mein aakar ke fakir ban jata hai.
Narayan becomes the wealthiest man in the golden age and becomes a fakir in the end of the iron age.
Seedhi ke chitra mein dikhaya gaya.
It has been shown in the picture of the ladder.
Seedhi ke chitra mein एक बैगर दिखाया हुआ है।
A beggar has been shown in the picture of the ladder.
कहाँ पड़ा हुआ है?
Where is he lying?
कांटों की सैया के ऊपर पड़ा हुआ है।
He is lying on a bed of thorns.
जो मिलते हैं, जिनके भी संपर्क में आता है, चाहे लौकिक दुनिया के लोग, चाहे अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया के लोग, चाहे संबंधी, चाहे लौकिक व्यवहार वाले, चाहे दोस्तों हों, सब कांटा लगाने वाली बातें बोलते।
Whoever he meets, in whoever's connection he comes, whether they are the people of the Laukic world, the people of the Alaukic Brahmin world, his relatives, those related to the Laukic world, or his friends, everyone speaks such words that hurt him like a thorn. They speak words that would uproot his faith. Words that uproot faith from what?
बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली है, उस वेदवाणी के ऊपर से निश्चय उखाड़ने वाली बात।
Words that would uproot his faith from the Vedvani which the father has narrated through the mouth of Brahma.
कांटे का मतलब ही होता है घाव लगाने वाली बात.
Thorn itself means words that hurt.
लेकिन जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश हो उसको कोई अनिश्चय कैसे पैदा कर सकता है.
But how can someone make the one whom Shiv Supreme Soul has entered have doubts?
टेम्पररी रूप में प्रवेश हो तो भी अनिश्चय हो सकता है.
He can still have doubts if he has entered him temporarily.
जैसे दादा लेकर आज ब्रह्मा में टेम्पररी रूप में प्रवेश था, टेम्पररी रह सका, तो 1968 में उनको अनिश्चय हो गया, 69 में 18 जनवरी.
Just as he entered Dada Lekhraj Brahma temporarily, he, that is Dada Lekhraj, was the temporary chariot. So he had doubts in 1968 on 18th January 1969.
कोई बात ऐसी आ गई, किसी ने ऐसा कांटा लगाया कि वो सहन नहीं कर सका और हार्ट फेल हो गया.
Such a news reached him. Someone pricked him with such a thorn that he couldn't tolerate it and his heart failed.
तो वो तो मुकर्रर रथ नहीं था.
Well, he certainly wasn't the permanent chariot.
बाप तो संसार में जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है.
When the father is revealed as the father in the world, he is revealed through the permanent chariot.
वो बाप सर्वव्यापी बन करके नहीं प्रत्यक्ष होता है.
That father isn't revealed becoming omnipresent.
सर्वव्यापी बन करके प्रत्यक्ष हो तो सबके ऊपर बुद्धि का कंसंट्रेशन करना पड़े.
If he is revealed becoming omnipresent, you will have to concentrate your intellect on everyone.
सबको याद करने से बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र होगी.
Will the intellect get diverted or will it become concentrated by remembering everyone?
बिखर जाएगी.
It will get diverted.
बुद्धियों को और ही छूट जाएगा.
The connection of the intellect will break even more.
बुद्धि की छीछा लेदर हो जाएगी.
The intellect will be in a bad condition.
तो बाप एक मुकर्रर रथ के द्वारा एक व्यापी बन करके प्रत्यक्ष होता है.
So the father is revealed through the permanent chariot being present in one.
कब?
When?
कब प्रत्यक्ष होता है?
When is he revealed?
जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया गया 76.
In 1976, when the year of the revelation of the father was celebrated in the world of Brahmins.
प्रत्यक्ष तो होता है.
He is indeed revealed.
कुछ विदेशी आत्माएं उस बाप को पहचानती भी है. लेकिन जिस रूप में पहचानना चाहिए उस रूप में 100% नहीं पहचान पाती.
सम विदेशी सोल्स रिकॉग्नाइज दैट फादर एज वेल बट दे आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम 100% इन द फॉर्म दैट दे शुड.
अधूरी सी पहचान होती
है. दे रिकॉग्नाइज हिम पार्शियली.
और अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है.
एंड पार्शियल नॉलेज proves to be dangerous.
क्या?
What?
दक्षिण भारत की आत्माएं बाप को पहले पहचानती
है. The souls belonging to South India recognize the father first.
उत्तर भारत की आत्माएं बाप को नहीं पहचान पाती.
द सोल्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ इंडिया आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द फादर.
लेकिन क्या 100% पहचानती है? या अधूरा पहचानती है।
बट डू दे रिकॉग्नाइज हिम 100% और पार्शियली?
आत्मा तो दक्षिण भारत की उत्तर भारत की नहीं होती।
अ सोल सर्टनली डजंट बिलोंग टू साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया।
होती है क्या आत्मा के लिए? किसी आत्मा के लिए पक्का कहा जा सकता है कि इस आत्मा ने 84 जन्म दक्षिण भारत में ही दिए?
Does it? Can it be said with certainty for a soul that he had 84 births only in South India?
अरे सत्युग त्रेता में तो दक्षिण भारत का बहुत सा हिस्सा होता ही नहीं।
अरे as a matter of fact, a major part of South India doesn't exist in the Golden Age and the Silver Age at all.
समुद्र में समाया हुआ होता है।
It is submerged in the ocean.
उत्तर भारत में ही जम्बू द्वीप कहा जाता है, भारत खंड कहा जाता है।
ओनली नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड द आईलैंड जम्बू, द लैंड ऑफ भारत।
उत्तर भारत में ही जहाँ जमुना बहती है, गंगा बहती है, वहाँ भगवान की जन्मभूमि गाई हुई है।
ओनली नॉर्थ इंडिया वेर द यमुना एंड द गैंजेस फ्लो इज ग्लोरिफाइड एज द लैंड ऑफ गॉड्स बर्थ।
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई आत्मा 84 जन्म दक्षिण भारत में ही लेती रही?
सो हाउ कैन इट बी सेड दैट अ सोल हैज बीन हैविंग 84 बर्थ्स इन साउथ इंडिया इटसेल्फ?
माने आत्मा कोई दक्षिण भारत उत्तर भारत की नहीं होती।
इट मीन्स अ सोल नीदर बिलोंग्स टू साउथ इंडिया नॉर नॉर्थ इंडिया।
क्या होता है फिर?
व्हाट बिलोंग्स टू इट देन?
दक्षिण भारत का शरीर हो सकता है?
द बॉडी कैन बिलोंग टू साउथ इंडिया।
तो दक्षिण भारत का जो शरीर पैदा होता है, जिन दक्षिण भारत के माँ बाप से जन्म लेता है, उसकी भाषा कौन सी होती है?
सो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अ बॉडी बॉर्न इन साउथ इंडिया, द वन हुज पेरेंट्स बिलोंग टू साउथ इंडिया?
जो भी दक्षिण भारत की भाषाएं होंगी वही भाषा होगी ना।
हिज लैंग्वेज विल बी द सेम एज द लैंग्वेज इज स्पोकन इन साउथ इंडिया, वोंट इट?
दक्षिण भारत में कौन कौन सी खास भाषाएं?
विच लैंग्वेजेज आर मेनली स्पोकन इन साउथ इंडिया?
तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम।
तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड मलयालम,
ये चार प्रदेश मिलकर के दक्षिण भारत कहे जाते
हैं। टुगेदर दीज फोर स्टेट्स आर रिफर्ड टू एज साउथ इंडिया।
तो दक्षिण भारत का शरीर है न कि आत्मा है?
सो डज द बॉडी और द सोल बिलोंग टू साउथ इंडिया?
क्या है?
What belongs to it?
शरीर है।
The body.
तो जो दक्षिण भारत में जन्म लेने वाला शरीर है उससे आत्मा भी जुड़ी हुई है।
Well, the soul is also connected to the body, which is born in South India.
कब तक?
Till when?
तब तक जुड़ी हुई है जब तक देह बहन।
It is connected as long as there is body consciousness.
आत्मा ने देह को धारण किया हुआ है, देह और देह के संबंधों को पकड़ के रखा हुआ है, तब तक दक्षिण भारत की है।
इट बिलोंग्स टू साउथ इंडिया टिल द सोल इज इन द बॉडी एंड हैज गॉट होल्ड ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द बॉडी।
और जब आत्मा देह को त्याग दे, बुद्धि से त्याग दे और एक बाप की बन जाए,
एंड व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी थ्रू द इंटेलेक्ट एंड बिलोंग्स टू द वन फादर,
तो जब एक बाप की बनेगी तो फिर भाषा कौन सी होने लगेगी?
वेल व्हाट विल हिज लैंग्वेज बी व्हेन ही बिलोंग्स टू द वन फादर?
जो बाप की भाषा माता पिता की भाषा वही मातृभाषा होगी।
द वेरी लैंग्वेज ऑफ द फादर द लैंग्वेज ऑफ द मदर एंड द फादर विल बी हिज मदर टंग।
बच्चा जहाँ जन्म लेता है जिन माँ बाप से और जहाँ पलता है जिन माँ बाप से पलता है उन्हीं की भाषा को सीखता है।
A child learns the very language of the place where he is born and brought up, the very language of his parents from whom he is born and receives sustenance.
ये कोई दूसरी भाषा होती
है? Or does he learn some other language?
वही भाषा होती है ना?
He learns the same language as his parents, doesn't he?
तो भाषा देहभान के कारण आ रही आदत।
So language becomes a barrier because of body consciousness.
भगवान की भाषा हिंदी और दक्षिण भारत में शरीर धारण करने वालों की भाषा अलग हो जाती है।
God's language is Hindi, but the language of the ones who take on a body in South India is different.
हाँ, जो अपने को पूरा ही सरेंडर बुद्धि करने में लग जाते हैं उनकी भाषा भी चेंज होने लगती
है। Yes, the language of the ones who engage themselves in becoming completely surrendered through the intellect also begins to change.
वो अपने अंदर दृढ़ता पैदा करते हैं।
They make it firm from within.
कि जो बाप की भाषा वही हम भाषा बोलेंगे, दूसरी भाषा बोलेंगे ही नहीं।
I will speak the very language of the father. I won't speak any other language.
भले हमें ये देश छोड़ना पड़े तो भी तैयार।
It doesn't matter if I have to leave this country, that is state. They are ready for that as well.
तो बाप की भाषा आएगी या नहीं आएगी?
So, will they learn the language of the father or not?
जरूर आएगी। जड़ता में तो बहुत ताकत होती है।
They will certainly learn it. There is a great power in determination.
जड़ता अगर पक्की हो जाए तो संगम युग में तो असंभव बात भी संभव हो जाती है।
If you are firmly determined, you can even make the impossible possible in the confluence age.
यह संभव को संभव करने का युग है।
This is the age of making the impossible possible.
ऐसे नहीं कि हमारा तो शरीर बूढ़ा हो गया है, हमारे तो बाल ही पक गए हैं, अब हमें भाषा कैसे आवेगी?
It isn't that you should think, my body has become old, my hair has turned white. How will I learn the father's language now?
नहीं।
No.
आत्मा थोड़ी बूढ़ी हो जाती है।
The soul certainly doesn't become old.
आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है।
The soul is ageless, immortal and imperishable.
तो भाषा की भिन्नता के कारण जो बाप का ज्ञान है वो उतनी गहराई से समझ में नहीं आता।
So, because of the difference in language, you don't understand the father's knowledge that profoundly.
माने 100% नहीं समझ में आता है।
It means you don't understand it 100%.
तो जब ज्ञान पूरा समझ में नहीं आएगा तो बाप की पहचान भी पूरी बुद्धि में नहीं बैठी।
So, when you don't understand the knowledge completely, the introduction of the father won't sit in the intellect completely either.
जो हिंदी जानने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में जितनी सच्चाई बैठी होगी, सच्चे बाप की पहचान बैठी होगी, उतना ही ट्रांसलेशन से समझ पाएंगे।
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रू फादर थ्रू ट्रांसलेशन ओनली टू द एक्सटेंट इट हैज सैट इन द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु नो हिंदी हु डू द ट्रांसलेशन।
उससे परे नहीं समझ पाएंगे।
यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर देन दैट।
इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है।
दिस इज व्हाई दिस ड्रामा इज प्री ऑर्डेंड।
क्या
व्हाट
ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी?
इज द ड्रामा बेनिफिशियल और हार्मफुल? स्टूडेंट्स बेनिफिशियल।
क्या कल्याण छुपा हुआ है?
व्हाट बेनिफिट इज हिडन इन इट?
कि दक्षिण भारत वाली आत्माओं को कई वर्ष पहले ये ईश्वरीय ज्ञान की सच्चाई दी जाती है, या दक्षिण भारत वाले ईश्वरीय ज्ञान को पहले पहले धारण करते हैं, लेते हैं, और उत्तर भारत वाले नहीं लेते।
द सोल्स बिलोंगिंग टू साउथ इंडिया are given this truth of God's knowledge many years ago. Or in other words, the ones belonging to South India assimilate and take God's knowledge first, while those belonging to North India don't take it.
आज भी उत्तर भारत में ये ईश्वरीय ज्ञान उतना नहीं विस्तार को पाया है, और दक्षिण भारत में विस्तार को पाया है।
Even today, this knowledge of God hasn't reached that much expansion in North India, while it has reached expansion in South India.
लेकिन फिर अड़चन क्या आ गई?
But then, what is the hurdle?
है? क्या अड़चन आ गई जो बाप की प्रत्यक्षता रुकी हुई है?
What is the hurdle that the revelation of the Father is held up?
है? भाषा, भाषा problem.
स्टूडेंट लैंग्वेज 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 प्रॉब्लम।
भाषा प्रॉब्लम का कनेक्शन देह भान से है या आत्मा से है?
इज लैंग्वेज प्रॉब्लम कनेक्टेड टू बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल?
देह भान से।
बॉडी कॉन्शियसनेस।
मैं दक्षिण भारत का हूँ।
यू थिंक आई बिलोंग टू साउथ इंडिया।
तो जब ये कहने में आता है मैं दक्षिण भारत का हूँ, तो ये बुद्धि में आता है कि आत्मा दक्षिण भारत की है मैं, या शरीर के लिए मैं कह दिया?
सो व्हेन यू से आई बिलोंग टू साउथ इंडिया डज इट कम इन द इंटेलेक्ट वेदर आई द सोल बिलोंग टू साउथ इंडिया और डिड यू एड्रेस द बॉडी एज आई?
किसके लिए बोला?
फॉर व्हाट डिड यू से दैट?
आत्मा के लिए बोला।
स्टूडेंट रिप्लाइज डिड यू से इट फॉर द सोल?
मैं दक्षिण भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत की हूँ, तो ये मैं किसके लिए बोला?
आई बिलोंग टू साउथ इंडिया सो फॉर व्हाट डिड यू से आई?
शरीर के लिए।
फॉर द बॉडी।
इसका मतलब आत्मा अभिमानी नहीं बने।
इट मीन्स यू हैवंट बिकम सोल कॉन्शियस।
अगर आपन को दक्षिण भारत का समझे बैठे हैं, तो आत्मा अभिमानी नहीं।
इफ यू हैव कंसिडर्ड योर सेल्फ टू बी बिलोंगिंग टू साउथ इंडिया यू आरंट सोल कॉन्शियस।
क्योंकि शरीर ही तो है दक्षिण भारत का, आखिरी जन्म का।
इट इज बिकॉज इट इज ओनली दिस बॉडी ऑफ द लास्ट बर्थ दैट बिलोंग्स टू साउथ इंडिया।
ये आखिरी जन्म का जो शरीर है वो ही तो दक्षिण भारत का है।
ओनली दिस बॉडी ऑफ द लास्ट बर्थ बिलोंग्स टू साउथ इंडिया।
इससे पहले वाले जन्म कोई जरूरी तो नहीं है कि दक्षिण भारत में होंगे।
इट इजंट नेसेसरी दैट यू हैड योर प्रीवियस बर्थ इन साउथ इंडिया इटसेल्फ।
और दक्षिण भारत के ही होते पहले वाले जन्म भी, तो फिर बाप को कैसे पहचान लिया?
एंड हैड योर प्रीवियस बर्थ आल्सो बीन इन साउथ इंडिया इटसेल्फ, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज द फादर?
सारे दक्षिण भारत वालों ने क्यों नहीं पहचाना?
Why didn't all those belonging to South India recognize him?
फिर तो सारे दक्षिण भारत वाले पहचानने चाहिए।
If so, all those belonging to South India should recognize him.
नहीं।
No.
जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की साथ ही रही हैं।
The souls who have accompanied the father for many births.
क्या?
What?
अनेक जन्मों का जिनका संसर्ग संपर्क बाप के साथ रहा है, वही आत्माएं अपने संस्कार के आधार पर बाप को पहले पहचान लेती
है। Only those very souls who have been in the connection and contact of the father for many births recognize the father first on the basis of their संस्कार।
और सारे दक्षिण भारत वाले बाप को नहीं पहचान सकते।
And not all those belonging to South India can recognize the father.
तो अंदर से भाव आना चाहिए।
So you should have this feeling from within.
क्या?
What?
कि मैं आत्मा दक्षिण भारत की नहीं हूँ।
I the soul don't belong to South India.
कहाँ की हूँ?
Where do I belong to?
हैं? मैं आत्मा तो सारे विश्व की हूँ।
I the soul belong to the entire world.
विश्व पिता की बच्ची और विश्व पिता के बच्चे कहाँ के
हैं? Where do the daughters and sons of the world father belong to?
सारे विश्व के हैं या दक्षिण भारत के हैं?
Do they belong to the entire world or just South India?
सारे विश्व।
They belong to the entire world.
विश्व कल्याणकारी।
They bring the welfare of the world.
तो जब ये भाव बैठ जाता है तो भाषा भी जब
So when you have this feeling, you will even learn the language soon.
और भाषा जब आ जाएगी, भाषा की तरफ दिलचस्पी बढ़ेगी कि जो बाप की भाषा वही हमारी भाषा होनी चाहिए, तो हिंदी सबसे सहज भाषा है।
And when you learn the language, when your interest for the language grows, thinking, my language should be the same as the father's language. As a matter of fact, Hindi is the easiest language.
क्या?
What?
दुनिया में सबसे सहज भाषा सीखने की कौन सी भाषा है?
Which is the easiest language to learn in the world?
Hindi.
Hindi.
भगवान बाप आते हैं तो सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं?
When God the Father comes, does he teach us easy राजयोग or difficult राजयोग?
सहज राजयोग सिखाने के लिए आता है।
He comes to teach us easy राजयोग।
मुश्किल को सहज करने वाला बाप आता है।
The Father who alleviates difficulty comes.
तो दुनिया की सहज से सहज लैंग्वेज में आकर के बोलेगा, सहज से सहज भाषा में आकर के बोलेगा या मलयालम में आकर के बोलेगा?
So, will he speak the easiest language in the world or will he speak Malayalam when he comes?
दुनिया की लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में जो सबसे सहज भाषा है उसमें आकर के बोलता है।
He comes and speaks the language which is the easiest to write, read, speak and listen to in the world.
जैसे भगवान आता है तो साधारण तन में आता है या बहुत असाधारण तन में आता है?
Just as when God comes, does he come in an ordinary body or a very extraordinary body?
साधारण तन में किस लिए आता है?
Students, in an ordinary body. Why does he come in an ordinary body?
कि दुनिया की जो साधारण से साधारण आत्माएं हैं, वो भी उसके संपर्क संसर्ग संबंध में आ सके। कोई ये न कह सके अरे भगवान तो इतना ऊंचा बन करके आया कि हम तो उससे मिल ही नहीं सकते। नीचे से नीचे तबके वाली भी आत्मा उसके साथ मिल सकती है।
सो दैट इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी सोल्स इन द वर्ल्ड कैन कम इन हिज कॉन्टेक्ट कनेक्शन एंड रिलेशनशिप सो दैट नोबडी कैन से अरे गॉड केम बींग सो एलिवेटेड दैट वी कांट इवन मीट हिम सो दैट इवन अ सोल बिलोंगिंग टू द लोएस्ट कैटेगरी कैन मीट हिम।
ऐसे नहीं तो उससे मिलने के लिए बहुत ऊंचा होना पड़े।
इट शुडंट बी द केस that you have to be a very significant person in order to meet him.
वो तो साधारण भाषा बोलता है, साधारण तन में आता है और साधारण ही कर्म करता है।
He speaks an ordinary language, comes in an ordinary body and even performs ordinary actions.
जैसे सर्व मनुष्य मात्र कर्म करते हैं वैसे ही बाप भी साधारण तन में आकर के साधारण कर्म करता है और साधारण भाषा बोलता है।
जस्ट लाइक ऑल द ह्यूमन बींग्स परफॉर्म एक्शंस इन द सेम वे द फादर ऑल्सो कम्स इन एन ऑर्डिनरी बॉडी परफॉर्म्स ऑर्डिनरी एक्शंस एंड स्पीक्स एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज।
तो ये सब किसके लिए?
बच्चों के लिए।
ये सब बच्चों के लिए तो है।
सो ही डज ऑल दिस फॉर होम He does all this just for children, doesn't he?
तो अपना ही लेना चाहिए ना।
So you should adopt his language, shouldn't you?
है? Realize करना चाहिए कि हम आत्माएं कहाँ की वासी हैं।
You should realize we the souls are the residents of which place?
परम धाम की वासी।
वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड।
परम धाम में कौन रहता है?
हु रिसाइड्स इन द सुप्रीम अबोर्ड?
है? बाप रहता है।
द फादर रिसाइड्स देयर।
परम धाम में ऊंचे के ऊंची स्टेज में बाप रहता है।
द फादर रिसाइड्स इन द हाईएस्ट स्टेज इन द सुप्रीम अबोर्ड।
अच्छा अभी तो बाप परम धाम में नहीं है।
अच्छा द फादर सर्टनली इजेंट इन द सुप्रीम अबोर्ड नाउ।
अभी बाप परम धाम में है? नहीं है। कहाँ है?
इज द फादर प्रेजेंट इन द सुप्रीम अबोर्ड नाउ? ही इजेंट। वेर इज ही?
साकारतन में है, मुकरर रथ में है।
ही इज इन द कॉर्पोरियल बॉडी इन द परमानेंट चैरियट।
तो वो मुकरर रथ है? जो मुकर्रर रथ है जिसमें बाप बैठा हुआ है उसको कौन सा धाम कहेंगे?
सो विच अबोर्ड विल दैट परमानेंट चैरियट इन हुम द फादर इज सिटिंग बी कॉल्ड?
वो परम धाम हुआ कि नहीं?
इज ही द सुप्रीम अबोर्ड और नॉट?
धाम माना शरीर भी क्या है?
अबोर्ड मीन्स व्हाट इज इवन द बॉडी?
शरीर भी घर है।
The body is also a home, that is abode.
तो जो जिसकी याद में होता है उसको उसकी भाषा वो भी आ जाती है।
So a person also learns the language of the one who he remembers.
छोटा बच्चा होता है।
There is a small child.
छोटा बच्चा एक दो साल का वो किसकी याद में रहता है, किसको देखता है?
Who does a 1 to 2 year old small child remember? Who does he see?
माँ बाप को ही देखता
है। He sees just his parents.
तो माँ बाप की भाषा उसको जल्दी बुद्धि में बैठ जाती।
So the language of the parents sits in his intellect soon.
ऐसे ही।
It is the same here.
एक बाप।
One father.
क्या नारा होना चाहिए?
What should the slogan be?
एक बाप दूसरा।
वन फादर एंड नोबडी एल्स।
तो कोई दूसरा है ही नहीं तो भाषा कौन सी आएगी?
सो व्हेन देयर इजंट एनीवन एल्स एट ऑल Which language will you learn?
जो बाप की भाषा तो बच्चों की भाषा.
As the language of the father, so the language of the children.
लेकिन करते क्या है?
But what do you do?
बाप ने जो घर बनाए हैं गीता पाठशालाएं, उन गीता पाठशालाओं में रोज आना ही बंद कर दिया.
You just stop coming every day to the homes, that is Gita Pathshala, which the father has made.
जब घर ही खलास हो गए, गीता पाठशाला में आना जाना ही नहीं होगा, तो परिवार की एक भाषा कैसे बनेगी?
When the very homes are finished, when you just won't visit the Gita Pathshala, how will the family have one language?
नियम पक्का करना चाहिए.
You should make a strict rule.
कि हम रोज क्लास करेंगे.
I will attend the class daily.
और बाप के घर में बाप की ही भाषा बोलेंगे.
And I will speak only the father's language in the father's home.
कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे. भले कोई दूसरा कोई हंसता रहे.
I won't speak any other language. Even if another person laughs at me.
छोटा बच्चा गिलिर गिलिर करके बोलता है तो उसको ये शर्म आती है कि माँ बाप हमारी हंसी उड़ाएंगे या बड़े भाई बड़े बहने हमारी हंसी उड़ाएंगे.
When a small child baby talks, when he blabbers, does he feel ashamed thinking, my parents or my elder brothers and sisters will laugh at me?
नहीं.
No.
और भी खुश होते
हैं. They feel happy even more.
खुश होते हैं या दुखी होते हैं?
Do they feel happy or sad?
खुश होते हैं.
They feel happy.
तो यहाँ भी बाप का परिवार है, बाप का घर है.
So it is the father's family, the father's home here as well.
पक्का कर देना है क्या?
You should make it firm. What?
कौन सी भाषा बोलनी है गीता पाठशाला?
Which language should you speak in the गीता पाठशाला?
हिंदी भाषा.
You should speak Hindi.
बड़े उल्टी सीधी निकले, कुछ का कुछ निकल जाए तो जो बड़े हैं वो सुधार देंगे.
It doesn't matter if you speak wrongly, if you use the wrong words, the elders will correct them.
Om.
Om Shanti.